ब्रजकाशमन रहता तो आ जाते। तो देखो उद्धव, हमें हमारे पास में किस लिए आए? तो कुछ उनका संदेश तुमको, तुम लोगों को देने के लिए। ओ, हमसे तो उसका कोई संबंध था नहीं, हम तो उनकी कोई विवाहित पत्नियां भी नहीं है, हमारे वो लड़के भी तो नहीं। अरे एक था संबंध, वो मानने का और न मानने का। हमने उनको प्रियतम माना, उन्होंने हमको अपनी प्रिया माना। जब मानना बंद हो गया, सखा सखा में सखा है, और जब किसी बात के लिए कुछ मतभेद हो गया तो मिताली छूट गई, कोई पक्की रजिस्ट्री तो हुई नहीं। वेद और समाज के सामने अग्नि में उनके साथ में हमारी शादियां तो हुई नहीं। वो एक मानने की बात थी, उन्होंने उसको भूल दिया और उसको लेप पोत दिया, बस वो खत्म हो गया। तो यहाँ इस जंगल में हमारे पास में उनको संदेश भेजने की क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, मान लेके भेज दिया। फिर कहती है, अच्छा हमारी बातें जरा गड़बड़ हो गई, अपने आप भूल अपनी स्वीकार करती है, बात ये ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक हुई भाई? ब्रज में हमारे लिए नहीं आए, सखाओं के लिए नहीं आए, दूसरों के लिए नहीं आए, किंतु एक स्थान है जिसको कोई भूल नहीं सकता है। और तो क्या बात, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, जो लोग घर के क्रिया स्नेह को, वैभव को, पुत्र को, परिवार को, सबको छोड़ करके अनित्य समझ करके और गए, संन्यास ले लिया, मुंडन करा लिया, सब कुछ छोड़ करके चले गए, तो सबको भूल जाता है, किंतु अपनी मैया को नहीं भूलेंगे। मैया को भूलना संभव नहीं, क्यों? हम लोगों को अस्वीकार कर सकते हैं, करें, किंतु जो एक घड़ा बना है मिट्टी का, वो कैसे कैसे बनता है घड़ा? एक कुम्हार चक्के पर चाक होता है, उस पर मट्टी गीली रख देता है और एक डंडा से उसको ऐसे ऐसे दो चार बार करके फुक फुक्स दे करके छोड़ देता है और वो घूमने लगता है। साथ में रखता है पानी, साथ में रखता है सूता, सूता माने धागा, और उसको बनाता जाता है और झट सूता लेकर के काट लेगा, और जब जब तक पानी थोड़ा सा हाथ में ले लेगा और ऐसे सवारेगा। यदि घड़ा कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद में, अरे भाई हमारा जन्म ऐसे ही हो गया, उसमें सूते और डंडे की कोई जरूरत नहीं है, डंडा और सूता है भी नहीं वहां, उसको अस्वीकार कर सकता है, किंतु अपना जन्म जो मिट्टी से है और अभी भी उसमें मिट्टी लगी हुई है, उसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो तुम्हारा ये तन मन हमारे प्रभु का, तुम्हारे प्रभु का, जदुनाथ जी का, वो जो शरीर तन मन है उसी से पैदा है, उसी से पला पोसा है, तो उसको कैसे माता को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? ये संभव है। शायद माता जी को कोई संदेश देने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए आपको भेजा गया है। ये कह करके गोपियां एकदम दृढ़ में आतुक हो गई। तो बड़े बड़े मुनि लोग, सन्यासी लोग भी नहीं, ये बात भी ठीक है। सन्यासी लोग, सन्यासियों में सबसे बड़े शिष्य सन्यासी कहलाता है शंकराचार्य। 8 वर्ष की उम्र में या 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया, कैसे जानती हैं? जब वो 5 वर्ष के थे तो बार बार माता जी से कहा कि मैं बन जाना चाहता हूं भगवान का भजन करने, बेटा हमें छोड़ करके ना जाओ, नहीं गए। बार बार कहता है किंतु बार बार वो मना कर देती हैं। एक दिन स्नान करने के लिए मैया के साथ में पासी नदी है दक्षिण में, उस नदी में गए स्नान करने। स्नान करने के लिए जब भीतर जल में प्रवेश उन्होंने किया, माता जी तट पर बैठी बैठी हैं, स्नान करके चली आई और बाल स्वभाव कुछ तैरने से लग गए और थोड़े से पानी में चले गए। जब गए थड़ात रोने लगे, मैया मैया बचाओ बचाओ, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राही कहते हैं ना, मगर ने पकड़ लिया और धीरे धीरे उनको निगलने लग गया। मैया अब मैं बचूंगा नहीं, मैया जोर से चिल्लाई, लोगों के लिए देखा कोई तट पर नहीं, कोई तट पर है भी तो किसी का सास ने इसे जाकर तो उसे छुड़ा लाए। अरे बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, गजग्राह में तो सुना, छोटे से बच्चे को पकड़ करके धीरे धीरे अथाह पानी की तरफ में ले चलने लग गया, धीरे धीरे निगलने लग गया। अब तो बड़े जोर से ये चिल्ला, मैया मैया जल्दी से कुछ करो। और मैया चिल्ला रही है, पानी में आ रही है, उतर जाए हमें, हम भी मर जाए। और लोग उसे चारों तरफ से ऐसे घेर कर रखा जाए, ये मर न जाए, वो तो गया, ये भी मरेगा, तुम्हें मरेगी क्या? कहता है शंकराचार्य, मैया एक बात कर दो, अभी तू संन्यास के लिए कह दे, मैं अभी संन्यास ले लूं, तो अंततः अंतिम समय भी संन्यास का संकल्प लेने से जन्म हमारा नहीं होगा और मैं परब्रह्म को पा जाऊंगा। जल्दी एक बात तू कह दे, संन्यास ले। उन्होंने कहा जैसा एक बच्चा तो जाइए है, बेटा तू संन्यास ले, तुम्हारी गति हो जैसा, अब तो बचा नहीं सकती, मैं भी तुम्हारे पीछे मरूंगी। बस जब ही संन्यास की बात उन्होंने कह दी, स्वीकृति दे दी, और त्यों ही हंसता हुआ उसमें से निकल आया। देखा जैसे उसको उसने छोड़ दिया मगर में, और वो धीरे धीरे आया, चलो बेटा घर चले। मैया तूने तो कह दिया संन्यास लेने की, अब मैं कैसे घर जाऊं, अब तो मैं चलता, चल पड़े। मैया अच्छा थोड़ा रुक जाओ, अंतिम समय में तुम किंतु आ जाना जब मैं रहूंगी तो, और हमारा काम जो कुछ होगा अंतिम तुमको करना पड़ेगा। अच्छा मैया ये तो जब वो मरने लगी अंतिम समय में, तब तक तो बड़े भारी सन्यासी हो चुके थे, किंतु अंतिम समय अपनी माता की इसके लिए वचन जो दिया था उसके लिए आए, माता जी को दर्शन दिया, और उनका क्रिया कर्म सत्कार जो कुछ करना था सन्यासी को नहीं करना चाहिए, उसके लिए कौन सा माता कौन पिता कौन क्या, किंतु किया उन्होंने। वल्लभाचार्य जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जब वो 80-85 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी स्त्री से कहा जी अब तो हम लोगों का संसार के बच्चे हो गए, बहुत भजन का समय चला जा रहा है, अब तुम आदेश तुम भी बूढ़ी हो गई, अपने बच्चों के पास में रहो जब तक जीवित रहो, और हमको कहो हम मैं संन्यास लेकर के चला जाऊं, कुछ भगवान का भजन करो, मैं आदेश नहीं दे। एक दिन उन्होंने क्या किया, ये सोए हुए थे दोनों घर में, और घर में आग लगा लिया, स्वयं आग लगा करके चादर टान करके सो रहे, उनकी स्त्री गर्मी के मारे उठी और उस तक, अरे जल्दी उठो उठो बाहर भागो 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 बाहर जल्दी, कहते मरा जल्दी भागो हटो बाहर बाहर चलो बाहर चलो। बस चादर उनकी खींच ली और उनको उठा करके जल्दी से जल्दी चलो भागो भागो यहां से। जब घर से निकले तो सीधा चले वृंदावन की तरफ, कहां जा रहे हैं, आपने तुमने आदेश दे दिया अब मैं घर में नहीं लौटूंगा, चले गए काशी में जाकर के संन्यास लिया, और दो दिन के बाद ही भी उनका शरीर अंत हो गया। तो वो कहते हैं भैया तुम सन्यासी या अथवा कोई भी रहे अपने माता का तो जरूर स्मरण करेगा, उसका तो ऋणी रहेगा ही, उसको अस्वीकार करना। अच्छा मैया के लिए, मैया के लिए तुमको भेजा गया, अच्छा तो उद्धव जी फिर एक बात, एक प्रश्न आ जाता है, क्या कहें तुमसे प्रश्न कर देती है, अच्छा ये बतलाओ ये मैया को सांत्वना देने के लिए भेजा तो उसने ये जो कपड़े और भूषण लगाए अपनी कंगालनी मैया को जो पितृगृह में तड़फ रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, शरीर सूख गया है, कपड़े अदल बदल नहीं करती, चिट्ठे फटते पुराने हो गए हैं, तो मैया को ये अपना वैभव दिखलाने के लिए उसने भेजा, हम लोगों को नहीं तो भेजा भेजा, अपनी मैया के लिए भी इसी तरह से भेजा, अच्छी बात है मैया को ये दिखलाने के लिए। एक दरिद्र घर का आदमी राजा बन जाए ने? एक दरिद्र घर का व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति ने? तो वो क्या करेगा, वो अपना ये पद गरिमा को दिखलाना चाहता है ने? अच्छा तो ये मैया का घर नहीं है ने? तो मैया को ही अपना ये रूप दिखाना चाहते हो, कृष्ण का संदेश यदि कहना चाहते हो रमापति का, तो ये मैया का पिताजी का घर नहीं, उनका घर उधर है भैया, ये गलती से इधर आ गए। सखी को, अरे सखी ये नंद भवन में जाना चाहता है जो यशोदा भवन, इसको उधर का रास्ता बतला दे। उद्धव जी ने सिर नीचा कर लिया, सोच रहे हैं मैं क्यों आया, बहुत अपने को धिक्कार दे रहे हैं,
कारी हैं गोपियां, जाओ जाओ तुमको देख करके तुम्हारे माता पिता जी धन्य हो जाएंगे और बड़े आनंदित होंगे, तुम्हें गले से लगा लेंगे, जे पुत्र ने हमको हमको सांत्वना देने के लिए भेजा अखबार में तुम्हें कस लेंगे। उनकी आनंद की सीमा नहीं रहेगी। वो उद्धव जी मर मर करके जी जी रहे हैं, मर रहे जी रहे, मुख छिपाने के लिए जगह नहीं, मैं क्यों यहां आया। फिर गोपियां कह चल रही हैं, वो तो वही खड़े रह गए नहीं, क्यों मैं आया, औरत पर क्यों आया, कपड़े पहन करके क्यों आया, इसको निकाल करके पैदल क्यों नहीं आया, ये सब चिंता कर रहे हैं। बड़ा भूल हो गया, बड़ी भूल हो गई। उद्धव जी से फिर पूछ रहे हैं, उद्धव अच्छा ठीक है तुम हमारे यहां पर रह गया, एक बात बतलाओ तो, कौन सी प्रीति है जो कभी नष्ट नहीं होती। जगत की प्रीति ऐसी है ना, हम किसी से प्यार करते हैं, या तो मैं मर जाऊं या वो आदमी मर जाए, तो प्रीति रहेगी खत्म। मां को पुत्र कब तक प्यार करता है, जब तक कि घर में जोरू ना आ जाए, और मैया जब तक कि झाड़ू दे रही है, बर्तन मांज रही है, सब घर का काम कर रही है, तब तक तो कुछ स्नेह रहेगा। अब मैया यदि बैठ गई घर में, बर्तन नहीं मल सकती, तू बच्चा भी तो बस में बैठ करके खिला सकती हो गोदी में, अरे जीवन भर तो मैंने तुम लोगों को खिलाया, अभी तुम लोगों के बच्चों को, अब मुझे भगवान का भजन करने का, शाम वृंदावन में चली जाओ, राधे श्याम करना, हमारे घर में रहने से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब बेटा होता नहीं, नहीं होता तो मैं कुछ नहीं जानता, इसे दिन रात लड़ेगी और बच्चों को भी नहीं लगी, बर्तन भी नहीं मार सकती, मां का हृदय में क्या बीतता होगा वो मां ही समझेगी। आजकल अधिकांश लोगों में अभी जो जूती है तो नहीं अभी इसको चिंता कर पा रही है, कि तो बूढ़ी हो जाने के बाद में ये चीजों उपलब्धि का विषय होगा, विशेष करके कलयुग के लिए। सतयुग और त्रेता द्वापर तक राम और ये सब थे, और आजकल के लड़के जैसे हो रहे हैं, लड़कियां हो रही हैं, आजकल इसकी संभावना कम है, होते हैं बहुत कम है। तो कहते कौन सा, अच्छा ये उत्तर बतलाओ, कौन सी प्रीति है जो नित्य काल रहती है, कभी भी नहीं मिटती है, अजर अमर प्रीति रहती है। जगत की प्रीति ये निरंतर नहीं रहती है, जब तक स्वार्थ है तब तक स्वार्थ लागी करे शब्द, ये जगत का ये नियम है। जब तक कुछ स्वार्थ आता है, हम आयरन चेस्ट में अपने रुपए को और अलंकार को रखते हैं, अलंकार को ये रखते हैं आयरन चेस्ट में, आयरन चेस्ट को आनंद होगा इसलिए रखते हैं, कोई दूसरा न हड़प ले, हमारे लड़के न हड़प ले और कोई दूसरी न हड़प ले, वो बहुएं आएंगी और हड़प लेंगी, इसलिए उसको छिपा करके रखो। गाय को हम स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, किस लिए, एक सुंदर बच्चा बछड़ी हुई, बड़ी सुंदर है, दूध गाय देती है 10 किलो, जब तक देती है तो बड़ी प्यारी है, काम छोड़ करके उसे खिलाने पिलाने आते हैं, उसे वो दूध लेते हैं, और किसी कारण से किसी की नजर लग गई, बछड़ी मर गई, गैया ने दूध देना बंद कर दिया, 1 बरस देखा 2 बरस देखा बच्चे नहीं दिए, अब कोई लक्षण नहीं देता है कि बच्चे देगी और दूध देगी, तो क्या करेंगे, घरवाली कहेंगी, बच्चे कहेंगे पिताजी इसको वो हार्ट लगता है या क्या, पैंट में बेचे जाओ, अरे कैसे बेचाएं इसको पाला पोसा, अरे इसको लेगा कौन, जानते हैं कसाई आपके अतिरिक्त कोई नहीं लेगा, अरे थोड़े हम उसको मारने जा रहे हैं तो जो मारेगा मारेगा, आप तो बेचाइए, नहीं आएगा तो ऐसे ही दे आओ, फिर दूसरी गैया ले आएगा। तो गाय के प्रेम के लिए, गाय की सेवा करने के लिए वो तो दिलीप इत्यादि करते थे, कृष्ण करते थे, हम तो स्वार्थी जीव है ना, स्वार्थ लाग करे सब व्यक्ति है ना, तो जो स्वार्थ की प्रीतियां हैं और एक निस्वार्थ प्रीति है। जानते हो उद्धव, यदि तुम रसिक हो गए तब तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। आप यदि रसिक नहीं होगे तो इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे लिए कभी भी संभव नहीं है। उद्धव जी चुपचाप सुन रहे हैं, कोई भी उत्तर प्रत्युत्तर कुछ नहीं, मुख बंद है। सुना है कभी, एक हेतु की प्रीति होती है, अनुपायनी भक्ति होती है, रामचरितमानस उसे अनुपायनी भक्ति दे। अनुपायनी माने जिसका कोई हेतु कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी ऐसी प्रीति होती है। और एक प्रीति होती है लौकिकी। अब दोनों में जो प्रीति होती है उद्धव, इसमें से जो लौकिकी प्रीति है वो नष्ट हो जाती है, और जो हेतु की भक्ति जो होती है, प्रीति होती है, वो कभी भी हेतु ही नहीं है, इसलिए वो तैय धारावत अभिचिन्न गति से वो बहती चली जाती है। तब भगवान में उनके चरणों में जब चित्त की गतियां, चित्त की वृत्तियां अभिचिन्न तैय धारावत निरंतर जमयी होकर के लग जाए तो इसका नाम है प्रेम। वो जन्म जन्मांतर भी शरीर बदलेगा किंतु वो प्रेम नहीं बदलेगा ना? और जिसका ऐसा नहीं है, शरीर से शरीर की प्रीति करते हैं, सौंदर्य देख करके, भोग के लिए, स्वार्थ के लिए, घर गृहस्थी के लिए, तो उनका वो चीज समाप्त होगा, कारण और साथ साथ में प्रीति भी नष्ट हो जाएगी। अच्छा उद्धव एक बात कहूं, हमारी प्रीति लौकिक ही नहीं थी, हमने उनसे प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं किया, और हम जानते हैं कि उसने भी हमसे जो प्रेम किया उसने निस्वार्थ होकर के किया, उसका कोई हेतु नहीं था। तो उद्धव बतला सकते हैं कि हमारी प्रीति क्यों पूछ गई, विलुप्त हो गई, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण बतलाओ। हमारा प्रेम तो विशुद्ध था, तो ये विशुद्ध होने पर भी कैसे मिट गया। उद्धव जी फिर उद्धव जी को कह रही हैं, वो उत्तर नहीं दे रहे। स्कूल में पाठशाला में कुछ बच्चे होते हैं, मास्टर ने पूछा ये बतलाओ तो बतला नहीं पाता, बार बार पूछने फिर भी नहीं बतलाता, चुपचाप खड़ा है। उद्धव जी सुनो, उद्धव कुछ प्रीतियां होती हैं, कैसी प्रीतियां, उसके लिए ये बतला रहे हैं। जो प्रीतियां नष्ट हो जाती हैं उसके लिए गोपियां कहते, देखो कैसी प्रीतियां, जो लौकिक प्रीतियां नष्ट हो जाती हैं। दो एक उदाहरण देती हैं, जो षटपद है भौंरा फूलों से प्रेम करता है, और प्रेम करके उड़ता हुआ आएगा, चारों तरफ से मंडराएगा, कभी उसका पुष्प का चुंबन करता है, फिर हट जाएगा, फिर आएगा, उस पर बैठ जाता है, बैठ करके उसका मधुपान करता है कोसों से, जब उसका पूर्ण मधु ले लेगा तो फिर उड़ जाएगा। भ्रमर ऐसे ही होते हैं, जब तक उसका स्वार्थ है, मधु नहीं पान किया तब तक तो मंडराएगा, और जहां पुष्प में मधु समाप्त हो गया और पी लिया तो बस वहां से भगेगा। उसका प्रीति का हेतु था मधु। तद सत्य सत्ता, तद असत्य तद असत्ता, जब तक मधु था तब तक तो वो मंडराया, जब मधु समाप्त हो गया उसका प्रीति का हेतु था तो वो बस छोड़ करके चला गया दूसरों फूलों पर। एक और सुनो, कामुका जो कामी व्यक्ति हैं, वो रमणियों के प्रति प्रीति दिखलाते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, कितना अनुनय विनय क्या नहीं करते हैं, पैरों में गिरेंगे स्वार्थ सिद्धि के लिए। तुम भी स्त्री सुकृत्या जदवत सुमन साई व षट पदा, जिस प्रकार से कामी पुरुष काम ही नार प्यारी जिमी, तुलसीदास जी ने भी उदाहरण दिया, कोई दूसरा उदाहरण नहीं, इसलिए ये सब उदाहरण शास्त्र में भागवत में भी ये उदाहरण दे रहे हैं। जो कामी पुरुष स्त्रियों के प्रति लोलुप हो जाता है और उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता है, प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में ऐसा देखा जाता है, पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण के बालक थे, सुंदर घर में उनकी स्त्री हुई, विवाह हुआ, बड़े को छोड़ देती है चूस कर, धन समस्त हो जाने के बाद में उसे छोड़ देती हैं। निस्वचतंत गणिका, प्रजाएं राजा को प्यार करती हैं। कब तक? राजा यदि जब तक बलवान है प्रजाओं का पालन पोषण कर सकता है, जब तक उसमें शक्ति है तब तक प्रजाएं उनको खूब राजा महाराजा जी और गजरे पहुंचाते हैं और उपहार इत्यादि देते हैं। राजा जरा बूढ़ा हो गया, शक्ति सामर्थ्य कम हो गई और वो पालन नहीं कर पाता, तब उसके विरुद्ध में वो बगावत कर देते, विद्रोह कर देते ने? और फिर प्रेम नहीं रह जाता, अकल्पात निपति प्रजा। अच्छा, विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए गुरु जी के यहाँ। पहले ऐसा नियम था जब बच्चे 8 वर्ष में उपनयन होने के बाद में गुरुगृह में चले जाते थे, तो ये तो उस समय की बात, विद्यार्थी पढ़ने गए 25 वर्ष की उम्र तक शास्त्र का अध्ययन करेंगे, वैराग्य पूर्वक रहेंगे। 25 वर्ष के बाद में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, एक नैष्ठिक एक उपकुर्बान। नैष्ठिक वाले तो वहीं से वहीं संन्यास लेकर के भगवान का भजन करेंगे, और उपकुर्बान वाले जो है वो फिर से संसार में लौट करके विवाह शादी कर करके रह सकते हैं। तो जो छात्र हैं गुरु जी से, जबकि पढ़ लिख लिया तब तक उनमें प्रीति थी, आज परीक्षा हो गई ना? और परीक्षा हो जाने के बाद में पास हो गए, अब गुरु जी से मिलने जाते हैं कि नहीं, बोर्ड की परीक्षा हो गई, पास कर लिया स्कूल से, सर्टिफिकेट मिल गया, अब स्कूल में मास्टर से कोई भी संबंध नहीं रही ना? छोड़ दिया, क्योंकि वो स्वार्थ था पढ़ने का, अध्ययन समाप्त हुआ और वो खत्म हो गया। पुरोहित यजमान के घर में जाता है, ये सब जागतिक प्रीति जो नश्वर जो खत्म हो जाती अभी दिखला रही है, और सिद्ध करना चाहती है कि तुम्हारे श्याम की प्रीति हमारे प्रति ऐसी ही प्रीति थी, कह रही है। और पुरोहित लोग यजमान के घर में जाते हैं, हाँ तुम्हारे पिताजी तो मानो हरिश्चंद्र जैसे दानी उसी कुल में आए, अब बड़े प्रशंसा की पुल बांधने लगते हैं और तरह तरह के आशीर्वाद देते हैं, पुत्र पुत्र संतानों से फलो फूलो, राजाओं जैसा तुम्हारा ऐश्वर्य हो, तुम्हारे गोल में गेहूं भरा रहे, और जो कुछ भी है सब आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं। काम थोड़ा सा हो गया और दक्षिणा मिल गई, कपड़े लत्ते मिल गए, रुपये को उन्होंने बांध लिया खूंटे में, और गमछे में जो कुछ दिया था वो बांध लिया, दक्षिणा मिल गई। गुरु जी कहते हैं जरा ठहर जाइए, बच्चे रो रहे होंगे, घर में गृहिणी अकेली है, फिर कभी आ जाए, अरे थोड़ा सा ठहर जाए। अब ठहरेगा पुरोहित, कितने बहाने आ जाएंगे, जहां दक्षिणा मिली बस खत्म। चिड़िया पेड़ में रहती है, पक्षी रीतिजा दत्त दक्षिणम, फलवान वृक्ष है, पत्ते लगे हुए हैं, तरह तरह के पक्षी उसमें घोंसला बनाते रहते हैं, यदि वो पेड़ जल जाए सूख जाए पक्षी रहेंगे, न फल है न फूल है न मंजरिया न कुछ है, उस पर अब पक्षी नहीं घोंसला बनाएंगे। हिरण अपने जंगल में बड़ा आनंद से रहता है, यदि हिरण में दबा यदि जंगल में दबाने लग गई और वन जल गया, अब उसमें छोड़ करके चला जाएगा दूसरे हरे भरे जंगल में, वहां पर रहन नहीं रहेगा, क्योंकि स्वार्थ है खाना पीना वहां पर और छाया और ये सब चीजें हैं। और उदाहरण, एक कोई भिखारी है, अतिथि गया किसी के यहां, आज देखा ना रावण अतिथि बन करके सीता जी के यहां गया, कैसा बन ठन करके एकदम बन गया अतिथि। तो अतिथि लोग घर में जाते हैं, अलग जगाते हैं, कहते हैं राधे श्याम राधे श्याम, माने भिक्षा लाओ, भिक्षांग देही पहले था भगवती भिक्षांग देही, अब वो कहते हैं राधे श्याम अथवा राम राम सीताराम लगाया, अलग जगाया, वहां पर रह रहा है थोड़ी सी देर, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट देखा, भिक्षा दे दिया गृहिणी ने और भिक्षा लिया और उलट करके नहीं देखा घर की तरफ, भिक्षा मिल गई ना, नहीं रहेगा, इसी तरह से उद्धव हमारी भी प्रीति कृष्ण में ऐसी ही थी और कृष्ण की प्रीति भी हमारे अंदर में यही थी। कृष्ण चले गए कोई भी बात नहीं, हम तो डरते हैं इसलिए कि अब से कृष्ण को कोई भी प्रीति नहीं करेगा। हम बिना किसी कारण के हेतु की, कल हमने बतलाया था ना भक्ति किसको कहते हैं, जब तक समस्त प्रकार की अभिलाषाएं भोग की लालसाएं संसार की किसी चीज के लिए प्रीति न रहे, केवल मात्र कृष्ण के चरणों में प्रीति रहे, ज्ञान वैराग्य योग तपस्या व्रत सबको छोड़ करके कृष्ण के राधा जी के चरणों में प्रेम हो, और ऐसा क्रिया ऐसी सेवा तन मन वचन से जो कृष्ण को आनंद हो, इसको कहते हैं उत्तमा भक्ति। तो गोपियां की भक्ति उत्तमा भक्ति से भी बहुत ऊपर प्रेमा भक्ति है, तो कोई प्रयोजन नहीं था। अब सोचते हैं कि हमारे प्रेम में दाग लग गया, लोग कहेंगे यार गोपियों का प्रेम ऐसा था और कृष्ण का गोपियों के प्रति ऐसा प्रेम था, अब तो उनको कोई स्नेह नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा। उद्धव देखो तुम्हारे प्रभु के लिए हम उतनी दुखी विरह में नहीं है, ये प्रेम जो अब अशुद्ध हो गया, शुद्ध प्रेम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। तुम बतलाओ तो, तुम तो सब शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो, अब इस प्रश्न का उत्तर तुम दो, हमारी प्रीति कैसे नष्ट हो गई, हमें कैसे भूल करके वो चले गए, बतला सकते हो? उत्तर उद्धव जी ने नहीं दिया। कहते हैं कि तुम हतभागिनियों को उत्तर नहीं दे सकते, उद्धव जी को सामर्थ्य नहीं इन प्रश्नों का उत्तर दें। देखा तब जब उत्तर नहीं दिया तब हा नाथ हा प्राणनाथ हा ब्रजनाथ हा गोपीनाथ हे प्राण बल्लभ कहते 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 वैसे एकदम तन्मय होकर के एकदम मानो सुख दुख गायंती प्रिय कर्माणी रुदंतस्य गतः प्रिया, लज्जा चली गई, मर्यादा का बोध नहीं रहा, किसी अतिथि के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अपने हृदय की बातें नहीं किसी से कहनी चाहिए, वो बातें भी उघाड़ करके उनके सामने उद्धव जी के सामने वो कहने लग गई जो कहना नहीं चाहिए। कोई पतिव्रता स्त्री ऊपर से बनती है और दूसरे से प्रेम कर लिया दूसरे पति से, अब वो अपने लड़कों को या किसी से कहेगी जो मैं इनको छोड़ करके उससे प्यार करती हूँ, कोई किसी से कहेगी, छिपा करके रखेगी और व्यक्ति भी नहीं कहेगा किसी से इस तरह से। किंतु आज गोपियां एकदम तन्मय हो गई शुद्ध बुद्ध खो करके, और जो नहीं कहना चाहिए ऐसी बातों को भी उघाड़ उघाड़ करके वो एकदम कहने लगी, एकदम निर्लज्ज सी हो गई। क्यों न हो ऐसा, क्योंकि उद्धव जी ने इनका प्रेम यह देख करके ही तो कहा था, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्त सहजा संग हरि कथो गीत पुनात भुवनत्वे। वह गोपियों की प्रेम की ध्वजा जब तक ये विश्व रहेगा, जब तक ये चीज जगत रहेगा, तब तक उड़ती रहेगी, कभी भी ये नीचे धूमिल नहीं हो सकती है। आज उन गोपियों के प्रेम की बातें, उनकी गाथाएं प्रेम की, जगत के लोग उसको कहकर सुन करके धन्य होंगे, तीन जगत भी उसके लिए पवित्र बन जाएंगे। कौन जगत? चित जगत, जीव जगत और ये भक्त जगत, सब कुछ उनके लिए कृतार्थ हो जाएगा। उच्च स्वर से वो कांदने लगी, रोने लगी, और कृष्ण से जो विलास इत्यादि की जो बातें हुई थी उनको कहने लग गई। उस समय में जबकि रोने लगी और चलने लगी कहां, कुंज के भीतर, उद्धव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुंज में जब भीतर प्रवेश हुई तो देखा एक कुंज में सुंदर कमल के फूलों का की सज्जा बनी हुई है, सुंदर क्षीण कलेवरा स्वर्ण की रंग जैसी, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त विदीप्त गौर विग्रह, अत्यंत सुंदर गौर विग्रह, क्षीण कलेवर मरी है कि बची है, कोई भी चीज श्वास आ जा रहा है कि नहीं, छीन कलर पड़ी हुई है। उस समय में वो देवी कह रही हैं, उद्धव जी पहुंचे, गोपियों ने आश्रम दिया बैठने के लिए, ये तो बैठ गई, राधिका जी के चारों तरफ में आश्रम दिया, उसने नहीं जो कि सो रही है, और जो गोपियां ले गई थी उन्होंने आसन दिया। कैसा आसन? टूटा फटा, पुराना, मलिन। उद्धव जी ने देखा, अब कुछ गोपियों की महिमा कुछ समझने लगे। उन्होंने उस आसन को ग्रहण नहीं किया। यदि पूज्य व्यक्ति हमें कोई आसन देता हो तो बैठ जाना चाहिए झट। दाम्भिक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति उस पर बैठ जाएगा, उसको अपनी गरिमा समझेगा। किंतु जो विद्वान धीर है उसको वो आदर करेंगे। किस रूप में? एक तो गोपियां आदेश करें इस पर बैठो, और इधर आसन दे रही है, उनकी पूज्या है। उन्होंने झट सिर नवाया, उस आसन को प्रणाम किया और उसको ऐसे हाथ से कर करके स्पर्श करके और सिर पर ऐसे लगाया और आसन के पास ही में बगल में रख करके बैठ गए। ऐसा ही होना चाहिए। गुरु व्यक्ति यदि आसन देता है, ये वैष्णव का विचार सब लेना चाहिए, झट उस पर बैठ नहीं जाना चाहिए। उसको प्रणाम करके हाथ से स्पर्श करके सिर पर लगाया और उसको बगल में रख करके आप बगल में बैठ गए। गोकुलपति के विच्छेद अब सहा नहीं जाता, प्राण निकलना चाहता है निकलते नहीं, हृदय टूट रहा है, फट रहा है। जैसे कालकूट विष हो, उस विष में उतनी कड़वाहट नहीं है जो कि कृष्ण के विरह में है। अब तो देखते हैं कि पचना अब असंभव है। अब इस व्यर्थ जीवन को प्रत्याग करना ही अच्छा है। आशा थी ये आएंगे कल तक, अब वो आए नहीं। वर्ष हो गया, कितने वर्ष, अब तो जरूर मरना है। ललिता जी उत्तर उनको धैर्य दे रही है, सखी देह करने से, देह का त्याग करने से कृष्ण आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तुम्हारे मर जाने से आ जाएंगे तो ठीक होता, तुम मर जाती नहीं? तो प्राण को छोड़ने से, वो तो थक पटाने से भी आएंगे नहीं। श्रीमती जी ने कहा, हमारा विश्वास जरूर है कि वो जरूर आ जाए मरने पर, क्योंकि मरने पर जिस चीज की चिंता करते हुए आदमी मरता है वही चीज को प्राप्त होता है, पहले बतलाया था ना? स्मरण करते हुए जब अपने शरीर को छोड़ देता है तो फिर उसी को प्राप्त करता है। स्त्री की चिंता करते करते स्त्री शरीर मिल जाता है, पुत्र की चिंता करते करते पुत्र हो जाता है। तो जब मैं मरूंगी और उन्हीं का चिंतन करते हुए मरूंगी तो जरूर पाऊंगी ना, इस जन्म में नहीं पाया मर करके पाऊंगी। हमको ये भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, मैं इसी संकल्प को लेकर के मर रही हूं। मैं ये चाहती हूं कि एक बात करना, तुम लोग, मैं जरूर मरूंगी, मर करके मिलूंगी। तब एक बात तुम लोग करना, यदि मैं मर गई बीच में तो हमारा शरीर में जो मट्टी है, मट्टी को क्या करना? मट्टी को लेकर के, ये तो गल जाएगा ना शरीर, पांचों पांचों में मिल जाएंगे। तो शरीर की मट्टी को लेकर के यहाँ पर कृष्ण आजकल मथुरा में है, चलते फिरते हैं, उस मार्ग में वो दे देना, जैसे वो चले तो उनको पैरों में मैं पड़ सकूं और वो चरण जुगल उनको मैं लपट जाऊं धूलि बन करके। ओह, हमारे शरीर में जो पानी है वो पानी कहाँ मिल जाए? यहाँ पर नंदनंदन जमुना में स्नान करते हैं, उस पानी में वो मिल जाए। यहाँ पर कृष्ण अवगाहन करें तो मैं उनके मुखों में चुंबन करूं और उनसे लिपट जाऊं अंगों में। और जब स्नान करके आए, जब दर्पण में अपना शरीर देखें, मुखारविंद देखें, उस दर्पण में मेरा तेज मिल जाए, अग्नि। आकाश कहां मिले? मथुरा में जहां चलते फिरते हैं, और रात में विशेष करके जहां शयन करते हैं, उस शयन के घर में आकाश में हमारा आकाश मिल जाए, मैं उनसे शरीर में घुल मिल जाऊं। और इसमें जो हवा है वो कहां जाएगी? कोई उनको ताल का, वृक्ष का जो पत्ते हैं, जो इसको जो पंखा करते हैं, उस विजन में मैं समा जाऊं, पंखे में हवा में। यदि कोई हवा करे तो उस विजन से कृष्ण के अंगों में लग जाऊं, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। और मरने के बाद में कदम्ब के वृक्ष में हमारे शरीर को टांग देना, यदि कभी, हाँ, कदम्ब के वृक्ष में, कमाल के वृक्ष में यदि कभी आएंगे तो देखेंगे ये हमारे वीर में तड़पती हुई इस प्रकार से मर गई। और ये कहते 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 देखा ये कौआ उड़ करके जा रहा है। रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया, कौआ को बुलाने लगी, ओहो तू मथुरा जा रहा है, सुनो 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 जरा मेरी बात सुन जाना और शाम से ये मेरी बात कह देना। देखो इस रास्ते से जाना ठीक एकदम मथुरापुरी में पहुंच जाओ, वो जहां पर कृष्ण है। देखो यदि किसी के घर में आगुन लग जाती है, आग लग जाती है, ये कहना उनसे संदेह करें किसी के घर में आग लग गई तो उसका कर्तव्य क्या है? उसके घर में जो गृहपालित पशु है, सुख है पिंजड़े में है, सुख पक्षी तोता मैना या गाय बंधी हुई है, जहां आग लगी तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? उसको खोल देना चाहिए, जहां तहां भाग जाए ना? तो हमारे इस देह में आग लगी है, किसकी? गृह की आग लगी। और इसमें जो पक्षी था वो क्या पक्षी है? प्राण, प्राण मेरा वो पक्षी है। उन्होंने इस पक्षी को इस शरीर में मेरा लेकर के दरवाजा बंद करके रख दिया है। अब ये प्राण छटपट कर रहा है निकलने के लिए, विरह की आग में जल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है। उनसे जरा जाकर के कहना जी मेरा प्राण रूपी पक्षी शरीर में मर रहा है, तड़प रहा है, उसे जरा खोल करके तो आए। कहिए निकल जाओ, प्राण तुम्हारे निकल जाए। अरे तो प्राण में अर्गला मने वो भीतर से वो बंद है, उसमें लगाया जाता है ना ये चटकनी या क्या होता है, अर्गला उसको कहते थे। पीछे से दरवाजा बंद कर दिया, इधर में तो सिकल रहती और पीछे से लकड़ी का एक डंडा ला ना लकड़ी का और उसे लगा दिया, उसको कहते हैं अर्गला। तो अर्गला को खोल जाए, अर्गला क्या है? उन्होंने ये कहा कि कल मैं आ जाऊंगा परसों, यही अर्गला है। वो आकर के कह दें या संदेश पूछ करके आओ, जो नहीं आएंगे ये कह दें और हमारा प्राण हट निकल जाए। कब तक ये प्राण पक्षी हमारा ये तड़पता रहेगा? ये कहते 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 बस मूर्छित हो गई। उद्धव जी देख रहे हैं, जमुना टटनी कुले केली कदम बेरम, केली का कदम्ब है, शीतल मंद सिगंध बह रही है। ओहो हमें वहीं पर ले चलो, जमुना के किनारे, कह रही है। कहते कहते ये मूर्छित होकर के फिर बक बक मन बक बकाने लगते हैं आदमी ना, होश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, कुछ अनर्गल बकने लग गए। वहीं पर ले चलो, वहां पर एक बात करना हमारे शरीर में, जमुना की मिट्टी चारों तरफ लगा देना। हम लोग दोनों एक ही साथ में बहुत दिन उसके अंदर में बिहार किया खेला, उसकी मिट्टी लेप देना और उसके ऊपर में श्याम नाम लिख देना, सब जगह हमारे सब जगहों में श्याम श्याम ये नाम लिख देना। और तुलसी मंजरी जो श्याम होती है उस तुलसी मंजरी उस पर दे देना। और हमें बेस्टन करके घूम चारों तरफ से घेर कर और श्याम 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 हरि यही कह, मरते मरते मैं वो सुनते सुनते बस अपने शरीर को छोड़ ये कह करके तब तो वो विलाप करती हुई तो वो तो मूर्छित हो गई। सुखदेव गोस्वामी जी राधा जी का नाम उच्चारण नहीं किया है भागवत में स्पष्ट रूप से, कहा है तीन चार जगहों में। एक तो कहा है अने आराधितो नूनम, जो आराधना करती है जो कृष्ण के साथ में अकेले में गई है सब छोड़ करके ब्रजबालाओं को, उसने ही इनकी सबसे अधिक आराधना की है, इसलिए उनका नाम है राधा और उनके क्रिया को कहते हैं आराधना। बस वो आराधना शब्द में जो राधा एक जगह का है और एक जगह का तीसरे स्कंद में राधसा, जो प्रेम से कृष्ण की आराधना करती है उसको नाम है आराधा, वो कृष्ण की सबसे प्यारी है, एक आया। और तीसरा जगह किंतु जरा बड़े स्पष्ट रूप से नहीं जानेगा कौन, जो रसिक है वही जानेंगे, जो मूढ़ है वो इस चीज को नहीं समझेंगे। तो वो कह रहे हैं काचित, श्लोक है श्रीमद्भाव काचित कृष्ण विरह में जो तड़प रही चिंतन करती, कृष्ण अंग संगमम की चिंता करती हुई, कृष्ण अंग की संगम की चिंता करती हुई कोई गोपी एकदम भाव में विभोर कर करके कहने लगते हैं। यहां पर एक काचित शब्द है, काचित माने क्या, काचित माने कोई, और काचित का जो विशेष अर्थ है वो है क्या, का माने प्रेम सुख, प्रेम सुख, आ का को आ चित, को माने प्रेम, संपूर्ण रूपी प्रेम से जो घिरी हुई है, जिसके भावों के द्वारा कृष्ण को बांध रखी है, उसका नाम है काचित, प्रेममयी जिनका स्वरूप है, कृष्णमयी जिनका स्वरूप है, लागनी शक्ति है, इसलिए काचित माने श्रीमती राधिका, काचित कृष्णम, कृष्ण को चिंतन करते हुई, कृष्ण संगमम माने क्या, राधा जी अब उद्धव जी को देख करके विरह में प्रणाम करने लग गई। उद्धव जी आगे बड़े उनके चरण को पकड़ करके उसकी धूली को लेने के लिए, और राधा जी क्या कर रही हैं, मूर्छित हैं, वो नहीं देखती कि उद्धव जी हैं, किंतु देख रही भाव नेत्र से एक भ्रमर आकर के उनके चरणों के तारफ में मड़राने लग गया, मड़ा रहा है वो कहती हैं कि ध्यानती कृष्ण संगमम, देखा का भयावनत्र से कृष्ण मथुरा गए, और वहां पर जदु कुल की कुमारियां कोई बड़ी सुंदरी रमणी कृष्ण से मिल रही है, कृष्ण उसे अंक में धारण कर रहे हैं, और धारण करके उनके कुमकुम जो वस्त्राक्षर में लगी है उस रमणी के, कृष्ण के वो माला में लग जाती है कुमकुम, और उसी कुमकुम पर बैठा हुआ ये एक भ्रमर है, और वहां से उड़ करके राधा जी को सांत्वना देने के लिए यहां आता है दूत का कार्य करने के लिए। ध्यान को देख करके उस रमणी को, अब इसके बाद में कृष्ण हमारे पास में अन्य विनय करने आए हैं, इसको कहते हैं खंडिता। बहुत प्रकार की माननीय गोपियां होती हैं जिसमें कि एक प्रकार की बस एकदम रूठ गई, कृष्ण नहीं कुछ भी नहीं किंतु रूठ गई, पहले तो कहा उनके विरह में तड़प रही थी, अब उनकी चिंता करते 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 देखा जो सचमुच में कृष्ण को देखा, उस रमणी को देखा, भाव में विभोर हो गई, और अंत में उनका बड़ा भारी मान उठा, कुछ क्रोधित हो गई, रुष्ट हो गई, रुष्ट होकर के और वो एकदम तिरछी नजर से देखने लगे, मनो भ्रमर आकर के उनके चरणों में जब भ्रमण करने लगा तो सोच रहे कि वो आए और लौट करके चले गए, मैंने उनको कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया, और वो बिना मनाए हुए जब देखा जो मान बहुत अधिक है तो वो लौट गए, और फिर अपने बदले में उस भ्रमर को भेजे हैं। अब उद्धव जी इसी बीच में उनके निकट जाकर के चरण पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, अब वो भाव नेत्र से देख करके वहीं पर उनको रोकती हैं। आयाति च मम निकटे जाति तो निन्नुत्य मथुरा नागरम, ओ चले जाते हैं मथुरा, फिर आकर के हमारे पास में आते हो, हमारे पास आने की तुम्हारी कोई भी आवश्यकता नहीं है, मधुप की तो बंधु मास पिशांग्री शपत्निया, 10 श्लोक उद्धव जी ने कहे, आज तो 6 बज गया है, मेरी इच्छा थी वो 10 श्लोक जो प्रेम के उद्गार हैं, जिसको चित्र जल्प कहते हैं, श्रीमद् भागवत का सार है प्रेम का, वो मूर्ति या 10 श्लोक है, तो ये कहने की इच्छा थी किंतु समय पूरा हो गया, भगवान की यदि इच्छा होगी फिर यदि कभी आऊंगा तो उन 10 श्लोकों को आप लोगों को सुनाने की कुछ चेष्टा करूंगा, साधारण आदमी इसके योग्य नहीं है, जब इसके लिए नारद और उद्धव भी योग्य नहीं है तो हम विषयों में फंसे हुए लोगों के लिए तो बात ही क्या है, जो जगत से छोड़ करके प्रपंच को भगवान का चिंतन करने वाले हैं, हमारे सुखदेव जी जैसे ऋषि उनको उन्होंने सुनाया ये सब, साधारण लोगों के लिए नहीं, और लोगों के लिए मना है, नहीं तब समाचार मनसप ही मन के द्वारा भी उनको चिंता मत करो। विशेष करके जब तक पुरुष भाव है, स्त्री भाव है, तब तक इसको नहीं सुनना चाहिए। किंतु इसके सुना बिना गति भी तो नहीं। उद्धव जी कहते हैं या हमारे व्यास जी कहते हैं अथवा और लोग कहते हैं रसिक लोग, भाई तो यदि नहीं कहेंगे तो जगत से चीज लुप्त हो जाएगी। काक कहां बैठता है? नीम के पेड़ पर। उसका फल बड़ा पीला पीला और कड़वा होता है। वो किंतु काक वहीं पर बैठेगा। पासी में आम की अमौरी जहां है, यहां पके हुए सुंदर मीठे फल हैं, सुंदर मधुर से भरे पत्ते हैं, कोयल उस पर बैठती है, वो नीम के पेड़ पर नहीं बैठेगी। और वहीं से वो कुक कुक करती है और वहां से वो काव काव करता है। तो जो लोग अरसिक हैं, जिनको ब्रजरस से प्रेम नहीं है, वो लोग हमारी बातों को सुनने उठ करके चले जाएंगे, ये बेकार की बात है। इसलिए रसिकों को लिए मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं वो, ये लोग सुनेंगे और यदि हृदय में कोई कामना वासना भी है तो सदा के लिए दूर हो जाएगी और कृष्ण का प्रेम वहां पर हो जाएगा। यदि श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं को कोई सुने तो हृदय में रही काम की भावना इत्यादि भी सदा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। ठीक है आने दो। तो इसलिए हम भी जानते हैं कि जगत में बहुत कम अधिकारी इसके हैं, कम अधिकारी हैं। इसको दे दो, दे दो। तो अभी थोड़े से संक्षेप में, अब तो समय करीब करीब हो चुका है, तभी मैं एक श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या तो कर ही दूं, आरंभ कर देता हूं, फिर यदि कभी आऊंगा तो विस्तार के साथ में इसका वर्णन करने की चेष्टा करूं। बहुत ही सुंदर चीज है और सरस है और बड़ी गंभीर है। राधा जी उसको देखते हैं कि उद्धव जी आ रहे हैं चरण की धूलि लेने, इधर भंवरा भी आकर के मर आने लगा। राधा जी के नेत्र बंद हैं, भाव नेत्र से देख रही है, इसे उद्धव जी ने को दूत कृष्ण ने भेजा है। ग्रंथकार कहते हैं, टीकाकार, वो जो भ्रमर था और कोई नहीं, कौन था वो? मधुसूदन ही थे। बन करके गोपियों की प्रेम की महिमा को देखने के लिए, विरह की अवस्था देखने के लिए स्वयं भ्रमर बन करके आए हैं और उनकी प्रेम की बातों को सुन रहे हैं। राधिका जी कह रही हैं, मधु पकीतो बंधो मांस पिसंघ्री। अरे मधु, अरे भ्रमर, तू कपटी का बंधु है, वो परम कपट है, और तुम मधु पकीतव बंधु, कितव मैंने होता है कपटी, धूर्त, छली, तो तुम कपटी का बंधु है, धूर्त का बंधु है, तुम धृष्टता कर रहे हो हमारे, आकर के हमारे पैरों को छूना चाहता है, हमारे पैर पवित्र हो जाएंगे, तू जल्दी यहां से दूर भाग, हटो यहां से, यहां तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। कपटी, वो एक कपटी और तू उसका मित्र बन गया है। यहां पर मत ठहरो, यहां से जल्दी से चले जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ना उसके साथ में कोई संबंध नहीं है, ये धृष्टता मत करो हमारे यहां बार बार, तो मना करती हूं मैं, हमारा पैर छुओ। तुम्हारे प्रभु जो है ना, अरे मधुपति से बचपन से हमारा संग है, उनको तो खूब बचपन से हम जानती हैं, अरे तुम तो आज के अभी नए आए हो, तुम उनको क्या समझोगे, हम उनको पूरी तरह से समझती हैं। ओ, तुम मान नहीं रहा, तुम्हारा सिर कांप रहा है, तू जैसे कि जो ये होता है ना मत पीने वाले, सिर कांपता है, पैर नहीं ठीक से चलता है और अंट संट पकेंगे, ऐसे तो तुम्हारा सिर कांप रहा है और तुमको ठीक से तुम्हारी बोली भी नहीं आ रही, स्पष्ट रूप से तुम बोल नहीं रहा, ओ करता है, मैं समझती हूं सब, तुमने अधिक मधुपान कर लिया, मैंने अधिक मत पी रखा है, मदिरा पी रखा है अधिक, तो माने कहते मुझे कहां मदिरा मिला, ये पान करो, अरे मधुपरी से आया है ना, वहां पर तो मधु का भंडार है, मदिरा का भंडार है, और उसका वो पति है स्वच्छ रूप से, तुम उनके सेवक हो, प्रचुर परिमाण में वहां पर मिला होगा, खूब तुमने चढ़ा लिया होगा, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है, ज्ञान नहीं है तुझे, ये कैसे किसी के पास में जाया जाता है। सखियां देखो, इसको जल्दी यहां से बाहर करो, ये मानता नहीं है, बड़ा दृष्ट हो गया है, सुनता ही नहीं है, इसको सरल मत समझो, है बड़ा छली, ऊपर से बड़ा बनता है ऐसा। अरे भाई कृष्ण का संग तो उसका संग हमने किया है ना, वो जैसे छल करता था ना, कितना भोला भाला बन करके आता था, तो हम सब समझती हैं वो उसका दूत उससे भी बड़ा है, उसका ये गुरु घंटाल है, उसको भी चकमा देने वाला है, ठगने वाला नहीं, तो उसका मित्र कैसे बन सकता है? कंस के मित्र कौन है?
जरासंध,
काल जबन, बड़े बड़े बदमाश दैत्य दानव है, जो जैसा होता है ना, ए मैन कैन बी नोन ए कंपनी, उसके एसोसिएशन से ये पता चलता है, उसके संगी साथियों से पता चलता है ये चोर है, चोटा है, भला है कि अच्छा है। यदि उसके संगी साथी ठीक हैं तो समझना चाहिए कि अच्छा है, और उसके संगी साथी चोर, बदमाश, जुआड़ी हैं, वो भी जरूर ऐसा होगा, समझ लेना चाहिए। एक भात एक हाड़ी में रसोई बन रही है, एक चावल निकाल लिया और उसको देख लिया, यदि वो सिद्ध हो गया तो क्या हो, समझना चाहिए, सब वैसे ही। तो एक आदमी की कंपनी के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा, उसके संग के प्रभाव से हम जान सकते हैं। तो ये मैं उसको जानते, इसलिए तुम उसके दूत बन करके आए हो, तो मैं जानते कि उसको भी ठगने वाले हो, इसलिए तुमको उसने मित्र बनाया है, उससे तो काम हुआ नहीं, हुआ है हमारे पास में, हमने अपने पास फटकने नहीं दिया, तो अब तुमको भेजा है, अब तुम हमको मनाने के लिए आए हो, अच्छा कि तो वो बंद हो, तुम कपटों के चूड़ामणि हो, अच्छा ठीक है, तुम हमें मनाने आए, तुमको पता नहीं ये कैसे आना चाहिए, माँ कितव बंधो माँ स्पृशांग्री, हमारे चरणों को स्पर्श न करो, क्यों? अरे देखो तो वो कहता है स्वामिनी जी आप झूठा क्यों ऐसा कह रहे हैं, न तो हमारे प्रभु मधुपान करते हैं मदिरा और न मैं पान करता हूं, झूठ मत बोल, हम लोग पकड़ लेती हैं, तुम्हारा ठीक चलना फिरना बोलना ठीक नहीं, और दूसरी तुम्हारे ये गोफ जो है उसमें क्या लगा रखा है, देखा कभी ऐना में, देखो जो क्या है, उनके दो चार केस होते हैं यहाँ भौरों के, तो वो फूलों पर बैठा है और उसका पीतरंग जो है उस पर लग गया है, तो अब वो कुछ पीला सा दिखाई पड़ता है, कुमकुम जैसा, तो कहते ये कुमकुम तुमको कहां मिला, बताता क्यों नहीं है, ये कुमकुम लगा करके हम माननीयों के पास में आया, हमने ध्यान में देखा ना, देखा वो देख रही है, पहले जो बतलाया मथुरा की रमणियों के साथ में गया था, दोनों मिले थे और उसका कुमकुम तुम्हारे इस पर लग गया, उसकी माला पर तुम बैठा, बस वैजयंती माला पर वो लग गया, उसको लेकर के हमको मनाने आया है, तू जानता नहीं है कैसे मनाना है, तुम स्नान करके क्यों नहीं आया, पवित्र होकर के आता तब मैं हम तुम्हारी बात को सुनती, तो तुमको तो होश नहीं है इसलिए तुम इसी स्थिति में आया। स्वामी जी हम तुमको दूर से ही प्रणाम कर, दूर से प्रणाम करो, निकट मत आओ, किंतु वो जाति के चंचलता से वो फिर मड़ाने लग गया, अब वो फिर थोड़ी देर के बाद में फिर मड़रा करके वहां पर गुंजार करता हुआ आया, तो कहता है ये तू कहां गया था हमारे सखियों को पैर पकड़ने के लिए, और वो हमें मना लेंगी, वो ऐसा करता था, उनका चरण भी छूने योग्य तू नहीं है, तू यहां से एकदम निकल करके चला जा मधुपुरी में, यहां पर तुम ठहर मत, उनका चरण भी छूने योग्य नहीं है। उद्धव जी मन में कह रहे हैं मैं प्रभु के निकट से आ रहा हूं, चरण कब स्पर्श करने का अधिकार हमें होना चाहिए। राधा जी भाव कर्ण को कहीं उन्होंने क्या गलती किया, उनको ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे जब वो जदुओं की सभा में बैठेंगे उस समय मालूम पड़ेगा, जिसका दूत इतना पागल, बुद्धि का लेश नहीं, उसके स्वामी भी ऐसे, यदि उन जदपतियों ने देखा कोई ऐसा चिन्ह देखा तो वहीं से उनको भगाएंगे, सभा में रहने बड़े बेइज्जती करेंगे, अपमान करेंगे, उनको जैसे होश नहीं तुमको भी ऐसे होश नहीं, उनको पहना का देना जरा सचेत रहे, नहीं तो वो छोड़ेंगे नहीं, उनका बड़ा अपमान कर देंगे सभा में ही। फिर कहते हैं सकृत अधर सुधायां पायित्वा, ओहो तो कहते हैं उन्होंने दोष किया, किया दोस्त तो ये किया, एक बार हम उसने हमें अपना अधर सुधा पान करा दिया, और हम भोरी एकदम पगली सी बन गए। वो जगत को आकर्षण करने वाला है, ऐसा उसकी अदर सुधा है। एक बार किसी प्रकार से यदि उसके मुखार बिंद में देखते हैं तो उत्तेजित आदमी होकर के उसको अधर सुधा का अपने आप पान कर लेता है, फूल बैठता है फूलों पर, ये भ्रमर क्या करता है, फूल पर बैठा तो मधु आरण किया दूसरे फूल पर चला गया। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने खुद अपना अधर सुधा पान कराया। किस लिए? गोपियां मरे नहीं और अपने विरह में तड़फाएं और उनको देख करके मैं आनंदित हूं। मछली पकड़ने वाले कुछ होते हैं, मछलियों को पकड़ लेंगे जीवित और छटपट करती रहेंगी और छटपट करते प्राणों को देख करके आनंद लगता है। जिनको दो पैर होता है उनको मनुष्य कहते हैं, चार पैर वालों को कहते हैं चौपाया, चौपाया जानवर, और जिनको छह पद है वो मूर्ख का भी मूर्ख। तो तुम मूर्ख का मूर्ख तुम है, क्यों आया यहाँ हमारे पास में चलेगा। एक श्लोक कहते हैं, कपिंद्रम बिव्यधे लुप्त धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपा स्त्री जीत कामयानम बलिमपि बलिमत्वावेष्ट यत् भ्रंग चबतज सदलमसित सखई दुस्तजस्तक कथार्थ। मानो भौंरा कर रहा है या उद्धव कर रहे हैं, स्वामी जी ऐसा आप मत कहें, वो ऐसे निष्ठुर नहीं है, वो तो आपके प्रेम के लिए आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप उनसे संधि कर लीजिए। इस पर कहते तुम्हारे प्रभु की बातें बतलाऊं, कितने निष्ठुर है वो, कितना ठग है, कितने कैसे वो हैं, मैं तुम्हें बतलाती हूं। बतलाने लग गई राधा जी को, कुछ आवेश आ गया, कुछ उनके अंदर में कृष्ण के प्रति वैसा ही भाव आया। प्रेम की ये तरंगे हैं, ये निंदा नहीं कर रही हैं, किंतु ये मन में ये सब तरंगे उठती हैं, कह रही हैं अजी हमने सुना है काले लोगों से कभी प्रीति नहीं करनी चाहिए, मैं कालों की व्याख्या कुछ कर रही हूं, बतला रही हूं, ये भी श्याम भी तो काले हैं ना, श्याम काले हैं, एक था राम वो भी काला था, और एक थे कश्यप जी के पुत्र
बामनदेव
वो भी काला था। ये कालों की कुछ बातें बतलाऊं, सुनोगे? तुम्हारे प्रभु की कीर्ति कलाप क्रियाकलाप बतलाऊं। कभी भी कोई व्यक्ति, एक शिकारी भी व्यक्ति बंदरों को नहीं मारता, क्योंकि वो बानर है ना, नर अथवा उनका मांस कोई शिकारी भी कोई भी नहीं खाता, इसलिए उसका शिकार नहीं किया जाता। तो रामचंद्र जी ने किसका शिकार किया?
बाली
का। क्यों मारा? दोष क्या था उसका? अरे सामने वीर थे, वीरतापूर्वक उसे सामने से लड़ जाते, योद्धा की भांति लड़ते, और यदि मार डालते उसे मार डालते कोई बात नहीं थी, पेड़ की कोट में छिपकर और बाण मारा, और बेचारा वो लहू लुहान होकर के गिर गया, छटपट करता हुआ। जैसे आप लोग धार्मिक कहते हैं, रामचंद्र निकट आए, आप धार्मिक है कि महात्यारे थे? आपके जैसा धार्मिक जगत में आज तक कोई जन्म नहीं लिया, इच्छा को कुल को आपने कलंक लगा दिया। अरे हमको किस लिए मारा? यदि कहते सीता जी को खोजना है तो रावण को तो मैंने अपने बगल में दबा रखा था, एक बार आया हमसे लड़ने के लिए, मैं सूर्य को हमको पेड़ की ओट में छोड़ करके मारा और तरह तरह के अपवाद उस पर लगाए। तो गोपियां कह रही हैं इनको कृष्ण नहीं मान रही है, कृष्ण ही उस जन्म में लिए थे, या हमने कहीं सुना है, कौन कहा? जुगमय ने कहा है, भृगु जी ने कहा है, या कोई कोई कहते हैं कि तुम ही वही भगवान, तो उस जन्म में भी तुमने ऐसा किया है, मारा उस बंदर को जिसका कोई शिकार नहीं, बड़े वीर बनते हो। अच्छा अच्छा ये बतलाओ, शूर्पणखा की नाक किस लिए काट ली? मृगयु कपिंद्रम बिव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम अजित विरूपा स्त्रीय कामयानम। कहते हैं कि शूर्पणखा की नाक कान किस लिए काट ली? बड़ा सुंदर केश को सवार करके बांधा, त्रिलोक को मोहन करने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाया, अब बना करके सीता जी के हाथों में अपना हाथ लेकर के बड़े प्रेम के साथ में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। फिर ये देखो तो वो स्वर्ण का एक हिरण आया, इसे जीवित पकड़ लाओ, मैं अयोध्या में ले जाऊंगी, भरत जी को उपहार दूंगी, भरत देख करके खुश हो जाएगा, मैया हमारी सासों को देंगी तो वो खुश हो जाएंगे, हमारे उपवन में ये रहेगा। और यदि पकड़ न सके तो मार करके भी लेना, तो आप इस पर बैठ करके पूजा अर्चना और संध्या करेंगे, किसी प्रकार से इसे छोड़ी मत, जरूर लाइए। जाते क्यों नहीं है प्रिय, चल प्रियतम जल्दी से जाओ, जल्दी से लाओ, नहीं कहीं भाग जाएगा, अरे देखो वो भागा, चली गई ना। और ने? और उसके पहले की बात, उसके वशीभूत होकर के चला मारने के लिए सोने का हिरण, ऐसा तो। और जब वो चली गई ना सीता जी, रावण ले गया ना कैसे, आज देखा विलाप कर रहे हैं सीता जी, लक्ष्मण लक्ष्मण जहां हो जल्दी आओ, राम तुम आर्य तुम कहां हो, विलाप करते चली जाए। और सीता जी जब आते हैं देखते हैं कि उसमें नहीं है, लक्ष्मण जी के साथ में सीते 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 कर रहे हैं, कहां गई तू, गोदावरी से पूछ रहे हैं, पेड़ों का आलिंगन कर रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, राम भूल गए जो मैं राम, भगवत्ता कहां चली गई, ऐसे स्त्रियों को मैं मोहित होकर के। और जब सुल्पनाखा तुम्हारे रूप को देख करके मुग्ध करके आ गई तो तुमने क्या किया, हमारी तो भाई शादी हो गई है, हमारा भाई अभी उसको स्त्री नहीं है, ये नहीं बतलाया जो कुंवारा है, नहीं ये बतलाया जो शादीशुदा है, उसकी स्त्री नहीं है, उसके पास जाओ, हमसे कम नहीं है, और ये सचमुच इसे शादी नहीं तो उसके पास चली जाऊं, तो उनका रूप देखा राम से कम नहीं, किंतु है यही बड़ा सुंदर, अच्छा तो ये बात होकर उन्होंने कहा जैसे हमारी स्त्री से शादी हमसे शादी करेगी तब तो हमारी तो स्त्री है या तुम्हारी सौत रहेगी, सौतों के साथ में अच्छा नहीं है, तुम चली जाओ, राज रानी बनेगी। वहां गई लक्ष्मण, अरे मैं तो उनका दास हूं, तू दासी बनेगी, अरे एक नहीं दो दस शादी करें, फिर गई तो उन्होंने फिर लौटा, बड़ी भयानक रूप हो गई, जब तक इसको खा नहीं लेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, विकट रूप धारण किया। राम ने कहा लक्ष्मण अधिक स्त्रियों के साथ में अधिक दिलगी नहीं करनी चाहिए, बस उन्होंने तलवार से उसकी नाक और ये कान दोनों काट लिए, पूंछ दिया, विरूप हो गई स्त्री, मस्जिद विरूपा स्त्रिया कामया नाम कामी पुरुष होकर के इतना क्यों बनाया, जो कि स्त्रियां लुप्त हो जाती उसे कह देता मेरी शादी होगा, मैं शादी नहीं करूं, नाक कान काटने की क्या जरूरत थी, बड़ा स्त्री जीत बनता है देखा है।